Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Aur स्वपन के, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर काम करता है स्वपन में, तो स्वपन के भोग भी सूक्ष्म है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि स्वपन के भोग भी सूक्ष्म है तो भोक्ता भी सूक्ष्म है, जागृत के भोग भी स्थूल है तो भोक्ता भी स्थूल है, और नींद में जब हम सो जाते हैं तो आनंद भूक, वह का भोग आनंद ही है और कोई चीज नहीं है, वह भोगता आत्मा ही है, आप तो रहते ही नहीं, अंतःकरण वहां नहीं रहता, तो वहां पर भोगता कोई नहीं लेकिन आनंद है। बात इस बात पर इसमें अंत में ज्यादा जो बल दिया गया है या सोचा जाएगा इन सब बातों को करते हुए, वो आखिरी बात पर ही अधिक विचार होता है कि उसमें आनंद किसको आता है। नींद में, नींद का जो भोगता है उसमें आनंद किसको आता है, ये बात इसमें आएगी कि आप तो होते नहीं, न हमारा अंतःकरण होता है न कोई होता है, लेकिन भोगता है और आनंद भी है, तो वहां पर फिर ये बात आ जाएगी कि भोक्ता और भोग्य दोनों एक ही होते, भोक्ता ही अपने आनंद में, अपने विलास में अपना खेल आप कर देखे, जो ये बात आएगी कि एक ही तत्व का विलास है, एक ही तत्व ऐसा कर रहा है। जितना जितना बहुत गंभीरता से हम शुरू से इस पर एक एक पर विचार करेंगे, अंतम छलांग में अपने आप ही इस आनंद में मगन हो जाएंगे कि इस दुनिया में स्वाय आपके अपने सुख के कहीं और सुख है नहीं। जब भी कभी वो उस सुख की अनुभूति होगी तभी इस संसार के चक्रों से छुटकारा मिलेगा, अन्यथा हम वास्तविकता तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने इसके नाम अलग अलग रखे। इस उपनिषद को आपने पहले भी कई बार सुना होगा, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही सुन रहे हैं, पहले भी कई बार सुना होगा। तो इसमें जब जागृत की बात करेंगे तो जागृत के भोक्ता को विश्व कहते, स्वप्न के भोक्ता को तेजस कहते और नींद के भोक्ता को प्राज्ञ कहते। इसलिए विश्व, तेजस, प्राज्ञ ये शब्द इसमें आएंगे, इसलिए उनको थोड़ा सा मैंने आपको ये बात बतला दी कि इनका अभिप्राय क्या है। भोक्ता तो भोक्ता ही रहेगा, भोक्ता में फर्क नहीं आएगा, ये भी बात आप अंत में देखेंगे कि भोक्ता जो वहां है वही वहां है वही वहां, लेकिन इस स्थूल भोग भोगने वाले का नाम विश्व रहेगा, सूक्ष्म वही जब कर रहा है तो तेजस रहेगा, तेजस का मतलब होता है अग्नि तत्व, और जब आनंद में जाएगा तो प्राज्ञ, नींद में जो जाएगा तो उसको प्राज्ञ कहेंगे। और एक बात जो ध्यान में रख ले तो और सुगमता होती है सारे को समझने की, जागृत अवस्था में जो भोगता है वो तो विश्व है और जो उसको भोग करवाता है उसको वैश्वानर कहते। भोगता विश्व है और विश्व को ही जागृत का अभिमानी कहते, जागृत का अभिमानी विश्व है। जिस समय जाग के आप कुछ भी काम कर रहे हो वो आपका, क्योंकि आत्मा आपका वास्तविक स्वरूप है, आत्मा का मतलब होता है अंतःकरण से अलग हो जाओ तो आत्मा ही आत्मा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग हो जाओ तो वो आपका असली स्वरूप है। जब तक ये मन बुद्धि चित्त अहंकार है तब तक आपका स्वरूप असली नहीं है, अडल्टरेटेड है, और अगर आप मन और बुद्धि को ही महत्व दे रहे हो तो आपका स्वरूप आप निकृष्टतम हो गए, अगर आप मन बुद्धि चित्त अहंकार और आत्मा या चेतन को साथ मिलाकर चल रहे हो तो आप साधक हो गए। कि चेतन तत्व तो जो कभी कभी हम परेशान होकर कहते हैं कि मन तो नहीं करता लेकिन फिर ये काम हो जाता है, गलती हो जाती है, जो हम ऐसा कहते हैं तो इसका अर्थ है हम साधक हैं। हमें चेतना का भी ध्यान है और हम ये भी जानते हैं कि ये अंतःकरण नाम का जो एक उपकरण है, एक करण है जो अंदर हमारे, वो हमें चेतना से कभी कभी उसको भूल जाने के लिए मजबूर करता है। हम वासनाओं में फंसकर परम चेतन से अलग ही हो जाते हैं कि ईश्वर भी कोई चीज है, इस बात को हम भूल ही जाते। तो ये जो भूल जाते हैं, जो बिल्कुल ही उसको भूल गए, तो इसका अर्थ हो कि हमने अंतःकरण को ही सत्य मान लिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार को ही सच मान लिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार का मतलब है जो चीजें मन से बुद्धि से इनसे जो चीजें पकड़ी जा रही हैं, इनसे जो हमने अपने रिश्ते नाते सामान या पोजीशन बना रखी है अपनी, उसी को सत्य मान लेना कि मैं अमुक हूं, मैं ये हूं, मैं स्वामी हूं, मैं महामंडलेश्वर हूं, मेरा ये आश्रम है, मेरा वो है, ये सब मन बुद्धि चित्त अहंकार तक की ही इसकी सीमा है। चेतन इसकी जागृत और स्वप्न तक ही सीमा है, सोते ही ये सब खत्म हो जाए। सोते का मतलब उस समय अंतःकरण का ना रहने का अर्थ है सो जाना। तो जागृत अवस्था में जो भी भोग करते हैं, हम भी जो जागृत अवस्था में कर रहे हैं, शास्त्रीय भाषा में उस समय हमारा स्वरूप विश्व का, तो असली स्वरूप से हम अलग है। असली तो स्वरूप हमारा चेतन है, असली तो शास्त्र कहते हैं कि तू ब्रह्म ही है और अंत में यही बात आएगी कि अहम ब्रह्मोस्मि। लेकिन जागृत में और स्वप्न के भोक्ता में क्या अंतर है, ये समझाने के लिए ये शब्द लिए गए दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। भोक्ता तो वहां भी है और यहां भी है और नींद में भी है, लेकिन भोक्ता में फिर अंतर क्या हुआ, ये समझाने के लिए अलग शब्द लिए गए कि जागृत के समय जो भी जागृत का भोगता है वो विश्व है और जो उसको भोग करवाता है उसको वैश्वानर कहते हैं। स्वप्न में जो भोगता है वो तैजस है और जो भोग करवाता है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है समष्टि तेजस, जैसे वैश्वानर का मतलब होता है समष्टि भोगता, जागृत का समष्टि भोगता। ये समष्टि भोगता, वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, ये शब्द केवल इसलिए कहे हैं कि आने वाले इन दो तीन दिनों में इन्हीं शब्दों का थोड़ा और विस्तार से इनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि इन शब्दों को समझेंगे तो अंत में तत्व तक पहुंचेंगे, ये शब्द छूट जाए। ये शब्द कोई, इनका कोई अर्थ नहीं है, इन शब्दों का केवल अर्थ इतना ही है कि ये हमें वहां पहुंचा दे ताकि हम कहीं गलती ना कर जाए रास्ते में। तो ये रास्ते की निशानियां हैं, जैसे नाम रखे हुए होते हैं कि ये अमुक चौक है, फिर अमुक चौक आएगा, फिर ये वाला चौराहा आएगा, अमुक नाका आएगा, उस नाके के बाद फिर ये जगह आदि। तो ये नाके आदि का कोई असल में अर्थ नहीं होता, लेकिन ये हमें ठीक जगह पर पहुंचाने में काम आ जाते। तो मानसिक यात्रा में ये केवल नाम मात्र है। तो तैजस जिसको हम कहते हैं वो स्वप्न का जो भोगता है, जो स्वप्न में कर रहा है, और स्वप्न में जो भोग करवाता है उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। सुषुप्ति में नींद का जो भोगता है उसको प्राज्ञ बोलते और जो उसको भोग करवाता है उसको ईश्वर कहते। तो आप ऐसा समझ लो कि जैसे नींद में जो भी हमें भोग करवाता है वो ईश्वर है, नींद का सुख ईश्वर का सुख है, ऐसा मान। उसके साथ मुख्य बात ये माननी है कि ईश्वर मेरा अलग नहीं है और आपका अलग नहीं, इसका अर्थ ये भी है कि नींद में सबका अनुभव एक जैसा। जब हम सो जाते हैं तो वो मैं हूं चाहे कोई और हो, कोई बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, कोई सन्यासी हो या कोई गृहस्थ हो, ब्राह्मण हो या कोई क्षत्रिय हो, हिंदू हो या कोई मुसलमान हो, पारसी हो या कोई ईसाई हो, स्त्री हो या कोई पुरुष हो, पशु हो या कोई पक्षी हो या मनुष्य हो। यहां पशु पक्षी मनुष्य का भी अंतर नहीं, क्योंकि ईश्वर जब आप आम बोलचाल की भाषा में भक्ति के ग्रंथों को लेकर जब हम चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं ईश्वर सबका एक है। एक है सबका मतलब पशु पक्षियों का, कीट पतंगों का, जितने भी है सबको बनाने वाला भाई। उपनिषद की भाषा में जब हम बात करेंगे तो वही सबका भोग करवाने वाला है, ऐसा बोले कि ये जितने भी है। चाहे अब नींद में क्या हुआ, नींद में ये हुआ कि कोई भी उस सबका दाता या सबका नियंत्रक, सबका वो एक हो गया। अपनी इन्हीं ये जो कल आपने श्लोक पढ़े इसमें छठा श्लोक या छठी का जो ऋचा है उसमें एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ ऐसे करके शब्द आए थे। और फिर सातवीं में तो आपने वो देखा था कि न बहिष् प्रज्ञा न अंतः प्रज्ञा न प्रज्ञा ऐसा करके वो आ गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे नींद में सबका अनुभव एक जैसा है, तो नींद का अगर अनुभव एक जैसा है तो सबका ईश्वर भी एक ही। ऐसे ही जागृत में या ऐसे ही स्वप्न में भी आप समझ लो कि तेजस लगता है कि जो स्वप्न का भोगता है वो हम अलग अलग, जैसे जागृत में लगता है कि हम सब अलग अलग भोग कर रहे, नींद में जाकर पता लग जाता है कि सबका भोग एक जैसा। वास्तविकता ये है कि जागते हुए भी और स्वप्न में भी सबका भोग एक जैसा ही, अलग नहीं है। अलग क्यों लगता है? अंतःकरण के कारण। सिर्फ अंतःकरण के कारण अलग लगता है, अंतःकरण के सो जाने पर, अंतःकरण से अलग हो जाने पर, वो आप समाधि के माध्यम से अलग हो जाओ या नींद के माध्यम से अंतःकरण से अलग हो जाओ या एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेने से अंतःकरण से अलग हो जाओ या कोई ड्रग लेकर आप अंतःकरण से अलग हो जाओ। अंतःकरण से अलग होते ही फिर सबका एक अनुभव एक जैसा, भोग एक जैसा, बातें एक जैसा। तो जब तक अंतःकरण है तब तक हमें लगता है कि हम अलग हैं, वस्तुतः अलग है नहीं। क्यों नहीं है अलग? क्योंकि एक ही तत्व सब रूपों में बना हुआ है। तत्व की दृष्टि से अलग नहीं है, देखने की दृष्टि से या जिसको स्थूल दृष्टि से हम अलग हैं ऐसा कह सकते हैं। लेकिन स्थूल दृष्टि पर भी जब आप विचार करोगे, जैसे जागृत अवस्था का विचार किया, तो ये शरीर पंचभूतों के बने हुए हैं, सभी के पंचभूतों के। कोई भी शरीर तो ऐसा नहीं है जो पंचभूतों का ना। चलो अगर ये बात समझ में नहीं भी आती कि हम पशु पक्षियों को भी अपने साथ मिला लें, तो कम से कम इंसान जितने हैं उनके तो ये पंचभूतों से ही बने। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके तीन शरीर सूक्ष्म कारण और स्थूल ना हो, उसमें भी बराबर है। पंचकोश हो तो उसमें भी हम सब बराबर है। अगर 19 मुख है अर्थात 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण का, तो पंच प्राण इन्हीं को तो 19 मुख कहा उन्होंने, देव एकोनविंशति मुख 19 मुख कहा। 19 मुख का मतलब है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चार को मिला दो तो 19 हो गए। इन 19 के माध्यम से हम भोग करते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम अनुभव करते हैं जिस चीज का भी करें। इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है। इनको शास्त्र में लिखो गो ये उपलब्धि स्थान है। उपलब्धि स्थान का मतलब इसलिए है कि इनके माध्यम से किसी भी चीज को हम पकड़ते हैं, उपलब्ध होते हैं। तो इसमें भी हम बराबर हैं सारे। अगर सप्तांग की बात लो तो सप्तांगों में भी सब बराबर है। तो जब सब चीजों में बराबर आ गए तो भोग में अलग कहां से हो जाओगे? कोई भी चीज तो बतलाओ ना कि जहां हम यहां यहां अलग है। तो वो अलग नहीं है, अलग होने का भ्रम है। क्यों वो है भ्रम? अविद्या के कारण। अविद्या असल में अलग अलग करती है और भ्रांति अलगता को सत्य मान लेती है। अविद्या ये कहती है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये अविद्या। भ्रांति इसको कहते हैं कि इसको सत्य मान लेना। अगर ये अलग है ये ठीक है, लेकिन ये सत्य नहीं, ऐसा बने कि ये व्यवहार चलाने के लिए है, नाटक को पूरा करने के लिए है, वस्तुतः हम सब एक हैं। कोई भी काम करने के लिए एक व्यवस्था बैठानी पड़ती है, घर गृहस्थी को चलाने के लिए, ये करने के लिए एक व्यवस्था है। अगर तो उसको हम व्यवस्था की दृष्टि से ये मान लें कि भाई ये सेक्रेटरी है, ये प्रेसिडेंट है, ये वो है, ये ऐसा है, ये वैसा, इतनी बात तो ठीक है, लेकिन इसमें सत्यता नहीं है। अर्थात इसी को स्थायी मान ले वो कुछ नहीं। काम चलाने के लिए ये बातें बनी थी। देखो वेदांत में संसार या रस्सी में सांप के जो बार बार उदाहरण देते हैं इसमें भी आएगा। वेदांत का ये अभिप्राय नहीं है, ये सिद्ध करना अभी उसका अभिप्राय नहीं है कि रस्सी में सांप नहीं है। ये वेदांत नहीं है कि रस्सी में सांप नहीं। वेदांत केवल ये आपको बतलाएगा कि रस्सी का सांप सच्चा नहीं, नजर आ रहा है आने दो, ये आपको काट नहीं सकता और ये दूध नहीं पी सकता, ये कर कुछ नहीं सकता, बीन बजाओ ये नाच नहीं सकता। वेदांत उसे झूठा नहीं कहेगा कि यह है ही नहीं। वेदांत कहता है कि यह सत्य नहीं और कोई बात नहीं, इसमें सत्यता नहीं है। सत्य का मतलब यह हमेशा रहने वाला नहीं है। ऐसे ही ये पूरे का पूरा संसार बना रहे, वेदांत केवल यही बतलाएगा कि यह सत्य नहीं। ऐसा नहीं है कि ये संसार है ही नहीं, ये है, लेकिन इसको सत्य न मान। हम इसको जब सत्य मानकर व्यवहार करते हैं तो सारी अड़चने तभी से शुरू होती। फिर कोई अपना है तो कोई पराया, किसी को हम धोखा देंगे और किसी से हम स्नेह करें। अपने स्वार्थ की उत्पत्ति तब होती है जब हम इसको सत्य मान लेते हैं। तो जहां तक इसकी सत्यता की बात है उसका ही विरोध करता है वेदांत। विरोध नहीं करता, वेदांत तो किसी का विरोध करता ही नहीं। वेदांत तो एक बात जो स्पष्ट है, जो तथ्य है, जो उसको सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है कि आप सत्य को पहचानो, फिर व्यवहार जैसे आपका अपना मन हो करो। उसके लिए भी ये मजबूर नहीं करता कि आप जरूर ऐसा करो, लेकिन अंतम अनुभव सबका यही है कि जिसको हम सच मानकर काम कर रहे हैं वो सच है। सब स्वप्न और जागृत में कोई अंतर नहीं है, जागते हुए भी जो कर रहे हो ये स्वप्न ही है। अगर ये बात बुद्धि में बैठ जाए और ऐसा ही जीवन जीना शुरू कर दिया जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आनंद सारे वही बने रहेंगे, सिर्फ राग द्वेष ये खत्म होंगे बीच में, जिसको हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं, उन्हीं का अस्तित्व खत्म होगा, बाकी चीज कोई खत्म नहीं होगी, बाकी चीजें तो बनी ही रहेगी जैसी की जैसी। तो इस तरह से ये जो भोग की बात कर रहे थे कि विश्व और वैश्वानर, जैसे नींद में सबका ईश्वर एक है, वैसे ही जागते हुए भी सबका जो, जिसको हम वैश्वानर कहते हैं, वो एक ही है, उसी को समष्टि कह लेते। समष्टि का मतलब व्यक्ति का मतलब अलग, विश्व तो अलग अलग नजर आ रहे हैं, हम तो अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो भोग करवाने वाला है वो सबका एक है। और अंत में बात ये आएगी कि ये विश्व और वैश्वानर भी असल में एक ही है, मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। इस बात पर पहुंचना है। जब हम अमात्र, देखो इस ओम की विशेषता ये उन्होंने बतलाई। एक बात तो आप ये भी थोड़ा ध्यान में रख लें कि लगभग साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सभी धर्मों ने और सभी साधनाओं ने चार कदम या चार सीढ़ियां स्वीकार की, चार स्थितियां स्वीकार की कि पहले कदम पर यह करना है, दूसरे पर यह करना है, तीसरे पर यह करना है और चौथे पर यह करना है। ये सभी धर्मों में एक सामान्य सी बात कि पहले पर यह करो, दूसरे पर यह करो, फिर तीसरे पर। इस उपनिषद में यह समझाया जा रहा है कि पहले पर आप जागृत का विचार करो, फिर स्वप्न पर विचार करो, फिर सुषुप्ति में विचार करो और चौथे में तुरीय तक पहुंच ही जाओगे। वो विचार की वो तो उपलब्धि है, वहां तक हमने पहुंचना है, चौथे पर जाकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही उन्होंने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति पर विचार करने के लिए और हर समय हम ब्रह्म से जुड़े रहे, ईश्वर से जुड़े रहे, ओम शब्द का सहारा लिया। और ये बात कही गई कि ओंकार जो है, ओम जो है, इसकी चार पाद, देखो आत्मा के चार पाद कहे थे उन्होंने, कल आपने देखा ही था कि चतुष्पाद अहम आत्मा, फिर उन्होंने कह दिया अहम आत्मा चतुष्पाद, इसके चार पाद। और चार पाद कौन थे? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरी। आगे चलकर वो इसके नौवें मंत्र में, दसवें मंत्र में ये कहेंगे कि ओम के भी चार पाद हैं और वो है आ, ऊ, म और अमात्र। अमात्र का मतलब होता है जब ओम इकट्ठा लिख दो तो कोई मात्रा नहीं रही, अलग अलग नहीं रहा। और आ को अलग लिखो, ऊ को अलग लिखो, मां को अलग लिखो, ऐसे तीनों को अलग अलग लिखोगे तो ये तीन अलग अलग कदम हो गए। और अगर एक ही जगह आप वैसे ही ओम लिखकर जैसे आप लिखते हैं या लिखा हुआ है तो ये अमात्र है, इसमें मात्राएं अलग अलग नहीं है, एक में ही समाग है। जागृत और स्वप्न ये अलग अलग नजर आएंगे, सुषुप्ति में ये बराबर हो जाते। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों देखने में, अनुभव में अलग अलग है, लेकिन आत्म तत्व में ये तीनों के तीनों एक है। अर्थात आत्मा न सोता है, न जागता है, न स्वप्न देखता है। आत्मा इन तीनों का प्रकाशक है, इन तीनों का बस प्रकाशक ही है, इनका वो दृष्टा भी नहीं कह सकते और वो साक्षी भी नहीं है, क्योंकि दृष्टा में, साक्षी में, इनमें बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म अंतर है। तो आत्मा इन तीनों का प्रकाशिक है, इसलिए उसको तुरीय कह लेते। तो तुरीय अवस्था है अमात्र, जिसमें अगर ओम को अलग अलग करें, एक आ यहां लिखे, ऊ लिखे, फिर मां लिखे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और अमात्र का मतलब होता है तुरीय तत्व, आत्मा। आत्मा में ये तीनों कल्पित हैं, आत्मा में ये तीनों अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे ओम अगर सामने लिखा हुआ आ जाए ओम, तो उसमें आप आ ढूंढो तो नहीं मिलेगा, उसमें ऊ ढूंढो तो नहीं मिलेगा, म ढूंढो तो नहीं मिलेगा। अगर ओम को हम लिखें, कहीं भी लिखा हुआ आप देखें, तो उसमें आ आपको नजर नहीं आएगा कि इसमें आ कौन सा है, ऊ कौन सा है, म कौन सा है। तो क्योंकि ये अवात्र में कल्पना की गई है इन मात्राओं की, आ उ और म, ऐसे ही तुरीय तत्व में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की कल्पना की गई है। वस्तुतः अपने आप में वो तुरीय तत्व, वो चेतन हर समय जागृत है, वो कभी सोता उठता बैठता नहीं, ना वो कभी मरता है ना कभी कुछ उसमें ये। और इसीलिए अंत में आपने एक ऋचा में एक श्लोक में यही बात पढ़ी थी कि मात्रा पादा पादा मात्रा, ये जो ओम की मात्राएं ले रहे हैं आप आ उ और म, यही आत्मा के पाद हैं। आ को जागृत अवस्था के साथ मिलाएंगे, उ को स्वप्न अवस्था के साथ मिलाएंगे और म को सुषुप्ति के साथ मिला देंगे। और जब आ उ म तीनों इकट्ठे होकर ओम लिखोगे तो इसको तुरीय अवस्था के साथ मिला देंगे। तो आ उ म ये तीन मात्राएं और हमारे जीवन की तीन अवस्थाएं, इसमें बाद में बात वो यही बतलाएंगे, ये यही बात करेंगे कि जब आप जाग रहे होते हैं तो ओम की पहली मात्रा अर्थात अ, क्यों इसको आ कहा गया, क्योंकि ये आदि है। आदि का मतलब ये सबसे पहले अ शब्द आता है। अगर वर्णमाला में भी हम देखें तो आ से ही शुरू होगी, आ आ ई ई उ ये वो ऐसे आ। और ऐसे जीवन में भी सबसे पहले जागृत अवस्था है, अगर जागृति नहीं होगी तो बाकियों को क्या कर लेना, अगर जागृत अवस्था ही ना हो तो बाकियों का तो कोई महत्व नहीं। ऐसे ही आ अगर नहीं है तो किसी भी वर्ण का किसी भी शब्द का कोई महत्व नहीं। बिना आ के अभी तक कोई शब्द कोई लफ्ज कुछ बना नहीं है आज तक और बन सकता भी नहीं, हर एक में आ अनुस्यूत है। ऐसे ही आ आदि है अर्थात सबसे पहला है और अवस्थाओं में जागृत अवस्था पहली। तो जागृत अवस्था में अगर आ का भी चिंतन बना रहे तो हम ओम से जुड़े रहेंगे और ओम ही ब्रह्म है, अर्थात जागते हुए भी सारे व्यवहार ब्रह्म में ही रहे, जागते हुए भी हम सच्चाई से जुड़े रहे। बात असल में सत्य से जुड़े रहने की, उसके लिए शब्दों का सहारा लो, मंत्र का सहारा लो, माला का सहारा लो, कुछ करो। बात तो यह है कि ये याद रहे कि मैं इंसान हूं, इंसानियत से गिर न जाए। तो अ के माध्यम से ओम तक को लेंगे साथ में, फिर भी ब्रह्म में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से अ उ म जागृत स्वप्न सुषुप्ति और उधर तुरीय अवस्था और इधर अवात्र ओम ओम तत्स्य।